ओम शांति। आज हम एक उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हम सभी ब्राह्मणों के जन्म से लेकर संपूर्ण बनने तक का एक मुख्य विषय है, इस जीवन की तपस्या है। तपस्या वर्ष चल रहा है और हम सभी को इन सात मुरलियों में बाबा ने जो अव्यक्त मुरलियां चली हैं, तपस्या के बारे में भिन्न भिन्न बातें कही हैं। और मूल रूप में तपस्या अर्थात जो बाबा सदा ही कहते आए, दृढ़ता के द्वारा किसी भी पुरुषार्थ का, किसी भी बात का बार बार अभ्यास। अगर सरल रूप में हम कहें, जो चीज हमें कठिन लगती हो, इस जीवन के सहज उन्नति में, संस्कार परिवर्तन में, उसके समाधान को, किसी भी अच्छी बात को, अगर हम सारे दिन में बड़ी तत्परता के साथ 100 बार भी याद कर लें, 100 बार बड़ी संख्या है ये, तो वो अभ्यास एक तपस्या का रूप ले जाता है और वो चीज जीवन में सहज आ जाती है। मुझे प्योरिटी से पहले एक चीज याद आई है, वो आपके सामने है। बाबा ने कहा है कि तुम्हारा जिम्मेदार हर बात में बाप है, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूं, तुम निश्चिंत रहो। इस बात को अगर हम 100 बार बुद्धि में ले आए तो आप समझ सकते हैं क्या अनुभव होगा। योगयुक्त स्थिति भी रहेगी और मन पूरी तरह हल्का रहेगा, कोई भी बोझ, चिंता, परेशानी सहज समाप्त होती दिखाई देगी। तो स्मृति का हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ में बहुत ज्यादा महत्व है। जिसने अपनी स्मृति को जितना अधिक बढ़ा दिया, भक्ति में स्मृति जैसा ही, क्या शब्द था, स्मरण, भक्ति में स्मरण था और अब बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई। तो जैसे वहां किसी भी चीज की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए स्मरण पर बड़ा महत्व जोर दिया जाता है, बार बार स्मरण करो, इतनी मालाएं फेरो, बाबा का अधिक ध्यान इस बात पर है कि बच्चे स्मृति का अधिक से अधिक अभ्यास करें। स्मृति स्वरूप होने के लिए स्मृति का बार बार अभ्यास एक बहुत सरल सी तपस्या है और पुरुषार्थ को सहज करने का साधन। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं संपूर्ण पवित्रता पर। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज तक हम सब सुनते आए थे, सन्यासी ऋषि सभी इसको संपूर्ण कठिन मानते थे और कलयुग के अंत में आते आते सभी ने इसको असंभव मान लिया, मनोवैज्ञानिकों ने भी और साधु संतों ने भी, बहुत भारी काम। बाबा आया, हम सभी के लिए पवित्रता का वरदान लाया और आप देख रहे हैं जब से यज्ञ शुरू हुआ, बाबा की नजर पड़ते ही आत्माओं ने प्योरिटी को स्वीकार किया, पवित्रता को अपनाया। क्या जादू हुआ इसमें, जो चीज कठिन थी वो सरल कैसे हो गई, इस बात को अगर हम गहराई से देखें, इसका विश्लेषण कर लें, तो वही पवित्रता को संपूर्ण बनाने का साधन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अपनी पवित्रता की शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला कदम है उसका, पवित्रता का महत्व हमारे पास स्पष्ट रूप में हो, हमारी बुद्धि इसके महत्व को अच्छी तरह स्वीकार कर चुकी हो। केवल इतना नहीं कि हमें पवित्र बनना है, क्यों बनना है, क्या महत्व है इसका, हमारी एक एक की पवित्रता संसार को बदलने में, प्रकृति को शुद्ध करने में क्या क्या काम करती है। जितना किसी चीज का महत्व होता है दुनिया में भी, उतना ही उसका ध्यान ज्यादा रखा जाता है। आप एक कांच की वस्तु घर में लाए हो, बड़ी कीमती 1000 रुपए की, टूटने वाली हो, कितना ध्यान रखा जाता, ऊपर रख देते हैं बच्चों की पहुंच से परे। जितना महत्व हम अपनी पवित्रता का समझते होंगे, और पवित्रता एक ऐसी कांच की सुंदर वस्तु है जिस पर इस कलियुगी संसार का प्रभाव पड़ना संभव है। चारों ओर कलियुग का अंधकार है, दूषित वायुमंडल का प्रकोप है, हमारे चारों ओर अशुद्ध आत्माएं हैं। ऐसे में इस गिफ्ट को संभाल कर रखना और उसमें संपूर्णता ले आना, अथवा यूं कहें कि अपने जीवन को पवित्रता के बल से भर देना, पहले है पवित्रता धारण करना और उसके बाद आता है पवित्रता का बल भर जाना, जो एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी कहें या संसार की सबसे बड़ी चीज, जैसे योग बल वैसे ही पवित्रता का बल, ये दो ही बल सारे संसार में सबसे बड़े बल हैं। तो पवित्रता की धारणा के बाद पवित्रता के बल को बढ़ाते जाएं। पहला कदम हुआ इसके महत्व को हम जानते चलें। दूसरी चीज जिस पर हमें और ध्यान देना है, पवित्रता की प्रतिज्ञा। और तीसरी चीज, वो कौन सी स्मृतियां हैं, वो कौन से अभ्यास हैं जिससे हम अपनी पवित्रता को संपूर्णता की ओर ले चलें। तो इन तीन बातों में हम इस सब्जेक्ट को स्पष्ट करते हैं। पहली चीज, पवित्रता का महत्व। ये बल बढ़ता जाए, उससे भी पहले हमारे पास ये बात भी स्पष्ट हो कि संपूर्ण पवित्रता कहते किसे हैं। हमारा पहला कदम पवित्रता में था ब्रह्मचर्य अपनाना। ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद हमें अपनी पवित्रता को संपूर्ण करना होता है। मन संपूर्ण स्वच्छ हो जाए, मन की भावनाएं निर्मल हो जाए, कर्मेंद्रियों के आकर्षण और देह के आकर्षण समाप्त हो जाए, और उसके बाद जिसको बाबा ने एक बहुत अच्छी परिभाषा अपनी मुरलियों में दी है, जिसकी चर्चा कहीं गीता में भी है लेकिन लोगों ने उसका अर्थ नहीं समझा, काम जीत अर्थात कामना जीत। लोग काम को भूल गए, कामना रह गई थी, लोगों ने समझा कामनाओं को जीतना है, परंतु काम जीत का प्रत्यक्ष स्वरूप है कामनाओं को भी जीत लेना। अर्थात पवित्रता अपने में एक ऐसा सुखद अनुभव है, एक ऐसी सुंदर प्राप्ति है, एक इतनी बड़ी पोजीशन है, पद है, जिसके बाद संसार की प्राप्तियों की कोई कामना शेष नहीं रह जाती। तो अगर किसी के मन का झुकाव, जैसे आज की मुरली में था, कहीं भी बुद्धि न जाती हो, अगर किसी के मन का झुकाव किसी व्यक्ति की ओर या वैभव की ओर भी जाता है, वैभवों की ओर भी जाता है, सांसारिक प्राप्तियों के पीछे भी दौड़ता है, तो वो भी पवित्रता की कमी का ही सूचक है। तो हमें अपनी पवित्रता को इन इन बातों से गुजार कर, और अंतिम उसका स्वरूप है कि हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावनाएं दूसरों के लिए बहुत ऊंची हो जाएं, मन में साधारण संकल्प न चलते रहें। साधारण अर्थात वो संकल्प जिनको हम व्यर्थ भी नहीं कहते, अपवित्र भी नहीं कहते, लेकिन मन में अनावश्यक विचार चलते रहते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, ऐसे विचारों से भी मन मुक्त हो जाए, बुद्धि भरपूर हो जाए श्रेष्ठ विचारों में, बुद्धि का बल बढ़ जाए, इसको कहते हैं पवित्रता की सबसे श्रेष्ठ स्थिति। ऊंची स्मृतियों में आत्मा स्थित हो जाए, दातापन का स्वरूप हो जाए, जिस तक हमें पहुंचना है, जो हम इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं कि हमें अपने को इतनी ऊंची स्मृति तक रखना है कि जिसको हम देखें उसको इस दृष्टि से देखें कि हम पवित्रता के दाता हैं, पवित्रता के बल को देने वाले। जो भी हमारे सामने आए, जिस पर भी हमारी नजर पड़े, उसको हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस मिले। ये हमारी बहुत ऊंची स्मृति है। इसमें स्थित होने के बाद बहुत सारी छोटी बातें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। बहुतों ने प्रश्न लिख के भेजे हैं, जिनमें एक क्वेश्चन है, व्यर्थ संकल्पों से कैसे मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए बाबा आज तक ये तरीका बताते रहे कि श्रेष्ठ संकल्पों का बल अपने में भरो। लेकिन उससे भी ऊंची बात बाबा ने कही है कि एक ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाओ, तुम कौन हो। जितना जितना वो नशा, अपनी महानताओं का नशा, अपनी शक्तियों का नशा, अपनी जिम्मेदारियों का नशा तुम्हें चढ़ता जाएगा, ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की भावनाएं, ईर्ष्या द्वेष, जो सब अपवित्रता में आते हैं, सहज भाव से समाप्त हो जाएंगे। वैसे भी अब जबकि हम सभी देख रहे हैं कि हम तेजी से समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लगता है ऐसा संसार में रहते हुए कि समय तेजी से समाप्ति की ओर है, लगता है ऐसा दिख रहा है, या लगता है कि समय तो अभी बहुत चलेगा। क्या लगता है? समय की सूक्ष्म पहचान जितनी हमें होगी, उतना हम अपने को सूक्ष्म बना सकेंगे। तो समय के अनुसार भी बाबा हम सभी को पवित्रता का विशेष बल देते जा रहे हैं। और जैसा आप सब जानते अनुभवों से कि पवित्रता हमारे इस जीवन में, इस आध्यात्म राह पर हमें संतुष्टता प्रदान करती है। पवित्रता में युद्ध है अगर, तो जीवन में संघर्ष दिखाई देता है, संतुष्टता नहीं दिखाई देती, आनंद नहीं दिखाई देता, युद्ध में खुशी नष्ट हो जाती है। इसलिए चिंतन ये करना है कि किस तरह अपनी पवित्रता को नेचुरल बनाते चले ऊंची स्मृतियों के साथ। पवित्रता का महत्व, महत्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बाबा के आप याद रखें। बाबा पवित्रता के संबंध में कुछ शब्द बोला करते हैं। पवित्रता है जैसे प्योरिटी रॉयल्टी है। एक शब्द रॉयल्टी है, इतना कहकर ही हम नहीं छोड़ दें। रॉयल्टी अर्थात जितनी पवित्रता हमारी बढ़ती जाएगी, हमारे संस्कार और विचार रॉयल होते जाएंगे। तो बहुत सारे संस्कारों का परिवर्तन, विचारों में रॉयल्टी स्वतः ही आएगी। इतना बड़ा महत्व है प्योरिटी का। प्योरिटी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है इस संसार में, और उसके लिए संसार में भी बहुत सारे साधन अपनाए जाते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं, पर्सनैलिटी पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊंचे विचारों का, हमारी प्योरिटी का। तो प्योरिटी स्वतः ही हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ा देती है। बाबा ने एक बहुत अच्छा तीसरा शब्द प्रयोग किया है, जिसकी आने वाले समय में हम सभी को ज्यादा अनुभूति होंगी। प्योरिटी सिक्योरिटी, एक सुरक्षा है ये। पवित्रता हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। कहीं भी हम जाएं, अकेले हों, गोलियां चल रही हों, प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हों, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन प्योरिटी हमारी सुरक्षा करेगी। ये बहुत बड़ा महत्व हो गया हमारी प्योरिटी का। इसी तरह हम जानते हैं, स्थापना के कार्य में प्योरिटी सबसे बड़ा सहयोग है। न केवल स्थापना के कार्य में, बल्कि विनाश के कार्य में भी प्योरिटी का ही सबसे बड़ा रोल होगा। कैसे? विनाश और प्योरिटी दोनों का क्या गहरा संबंध है, कौन बताएंगे? प्योरिटी और विनाश, बोलो, है किसी को ख्याल? एक बताए सुनता नहीं, और इसमें सबसे बड़ा पार्ट होगा पवित्रता का, क्योंकि विनाश का एक बहुत बड़ा कार्य प्रकृतिक प्रकोप के द्वारा होगा, और प्रकृतिक प्रकोप हमारी संपूर्ण प्योरिटी के द्वारा होंगे। जितनी जितनी हमारी पवित्रता नेचुरल होती जाएगी, उतना उतना प्रकृति का शुद्धिकरण होगा, और प्रकृति के शुद्धिकरण को ही, प्रकृति के पावन बनने को ही दूसरे शब्दों में प्राकृतिक प्रकोप कहा जाएगा। अभी बाबा ने कहा लास्ट अव्यक्त मुरली में कि प्रकृति हलचल मचाएगी, प्रकृति का हरेक तत्व हलचल करके प्रकृति को शुद्ध करेगा, तो प्रकृति की हलचल ही प्रकृति का प्योरिफिकेशन है, उसका शुद्धिकरण है, पावन बनना है, और वो निर्भर है हमारी पवित्रता पर। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे मन में अपवित्र ख्याल चलते हैं, अपवित्र फीलिंग है, तो प्रकृति को हम दूषित कर रहे हैं। जैसे संसार में आजकल चर्चा है ना, धुआं ज्यादा निकलेगा चिमनियों से तो वायुमंडल दूषित होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और हमारे अपवित्र ख्याल संसार में सूक्ष्म रूप से पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ाएंगे। और अगर हमारे मन में शुद्ध विचार हैं, तो वो प्रकृति को शुद्ध करेंगे। तो अगर हम पवित्र बनते हैं तो हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। जो प्रकृति के मालिक बन के पवित्र प्रकृति को शुद्ध करेंगे, पहले प्रकृति की सेवा करेंगे, प्रकृति उनकी सेवा करेगी। विनाश काल में प्रकृति जहां सबका संहार करेगी, ऐसी आत्माओं का जिन्होंने प्रकृति की सेवा की है अपनी पवित्रता के द्वारा, ऐसी आत्माओं की सुरक्षा करेगी। तो इतना बड़ा महत्व है। और दूसरी ऐसी ही बड़ी महत्व की बात, अगर आप सभी धर्मों की कहानी को देखें, उसकी हिस्ट्री पर ध्यान दें, तो धर्मों का उत्थान और पतन, धर्मों की स्थापना पवित्रता पर आधारित रही है। कोई भी धर्म जब अपनी पवित्रता को खो गया, वो धर्म विनाश की ओर बढ़ गया, और जब तक उसके कुछ थोड़े से भी लोग पिलर्स पवित्रता में मजबूत रहे, तब तक वो धर्म बहुत मजबूत रहा। चाहे उसकी संख्या थोड़ी रही हो, लेकिन उस धर्म में बल रहा। तो पवित्रता धर्म का बल है, और हमारी पवित्रता एक ऐसे ऊंचे धर्म की स्थापना करती है जो दो युग तक इस सृष्टि पर संपूर्ण बल के साथ स्थित रहता है। तो पवित्रता की शक्ति के द्वारा हम धर्म रच रहे हैं, और योग की शक्ति के द्वारा राज की स्थापना कर रहे हैं, राज करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग है राजयोग, और पवित्रता के द्वारा धर्म की स्थापना। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक एक पवित्र आत्मा की है। व्यक्तिगत रूप से देखें तो पवित्रता किसी भी मनुष्य को विघ्नों से मुक्त बनाती है। जितना पवित्रता का बल बढ़ता है, जीवन निर्विघ्न बनता है। चाहे आप अपने लौकिक परिवारों में रहते हैं, पवित्रता का बल सभी को सहयोगी बनाएगा। कोई भी विघ्न आपके पास आ रहा है, चाहे आपके लौकिक कार्यों में, चाहे संबंधियों की ओर से, आप अपनी पवित्रता पर ध्यान दें, उसको ठीक कर लें, विघ्न समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमें पवित्रता के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर विशेष ध्यान देना है। रोज के अपने अभ्यास में जितनी पवित्रता उतना सहज योग, जितनी पवित्रता उतना ही बाबा से बात करने का सहज अनुभव, जितनी पवित्रता उतना ही बाबा के सर्व संबंधों का रस। तो इस पुरुषार्थ में भी इसका बहुत महत्व है, और आगे पीछे भी इसका बहुत महत्व है। ऐसी पवित्रता को हमें अपने जीवन में एक श्रृंगार के रूप में समा लेना है। सबसे पहली चीज पवित्रता की प्रतिज्ञा। जो हरेक आत्मा करती है उस प्रतिज्ञा को दोहराना और स्वयं से प्रतिज्ञा करना, केवल बाबा से नहीं स्वयं से प्रतिज्ञा करना। जैसे भारतवर्ष में पहले से बहुत सारे शक्तिशाली लोग, या ऐसा कहें कि भारत की ये सभ्यता चली आई है कि यहां पर लोग अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट निर्णय लेने होते हैं वो केवल एक बार लेते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं बार बार, और जो शक्तिशाली मनुष्य हैं उन्होंने जो एक बार निर्णय ले लिया वो फाइनल जीवन के लिए, चाहे उसको निभाने के लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े हों, है ना। भारत की सभ्यता में ये, भारत के ग्रंथों में यही है। तो हमने पवित्रता का वचन दिया है भगवान को, किसी मनुष्य को नहीं, भगवान को वचन दिया है, और उसे हमने कह दिया है कि अब तुम हमारे हो और कोई की तरफ हमारी बुद्धि का आकर्षण नहीं जा सकता। वैसे भी संसार में सबसे कीमती चीज, सबसे आकर्षक चीज शिव बाबा ही है, सबसे बड़ी शक्ति भी वही है। अगर एक छोटी सी चीज हम देखें दैनिक जीवन में, तो मनुष्य को जब एक चीज से अच्छी चीज मिल जाती है दूसरी, तो उसकी ओर बुद्धि चली जाती है, तीसरी उससे अच्छी मिल जाए तो दो से बुद्धि निकल के तीसरी में चली जाती है, चौथी उससे भी अच्छी मिल जाए तो भले ही तीसरी भी अच्छी हो लेकिन चौथी बहुत अच्छी लगती है। और इन सब में टॉप पर सबसे अच्छा कौन है? वो शिव बाबा है, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली। वो एक ऐसा है जिसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ मिलता है, चाहे वो सुंदरता में हो, चाहे वो हमें मदद करने में हो, चाहे शक्तियों में हो, चाहे हमें संपूर्ण रास्ता दिखाने में हो। तो वो सबसे श्रेष्ठ, सब उसके नीचे। तो हमने उसको वचन दिया है, आप पूछें अपने से कि भगवान को सच्चे दिल से वचन दिया है, और वचन देकर उससे हमें पीछे नहीं जाना है। ये हमारी एक स्वभाव है, हमारी संस्कृति है। वचन दे दिया, उसको निभाने के लिए चाहे हमें कितने भी कष्ट क्यों न सहने पड़ जाएं, उसको निभाएंगे। और कष्ट सहने के बाद ही आत्मा में बल आता है। कोई ये न सोचे पहले ही कि पवित्रता हमने अपना ली, अब तो हमारा मार्ग साफ होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता निर्विघ्न बनाती है। पवित्रता के मार्ग में अगर विघ्न आते हैं और हम उनमें अडोल रहते हैं, तो पवित्रता हमें सबसे बड़ा बल देती है, और इतना बड़ा बल कि जिसने पवित्रता के चैलेंज को स्वीकार किया वो संसार के सभी चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं। दुनिया में कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े उनके लिए सहज होता है। तो वचन दिया है भगवान को, आप अपने से अंतर दिल से पूछ लें, सच्चे दिल से वचन दिया है, और रोज सवेरे उस वचन को दोहराना है, भूल न जाए। संसार की बहुत सारी बातें भुला देती हैं कि भगवान से हमने क्या वायदा किया है। भक्ति में हम कहते थे, बाबा याद दिलाते हैं कि हे भगवान, जब तुम आओगे तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। अब हम वैसा ही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं, या अब हम कुछ और कर रहे हैं। तो अपने किए हुए वायदों पर अटल रहने में हमारे इस जीवन की सफलता है। यह है पहली बात जो किसी के भी जीवन में पवित्रता का बल बढ़ाती है, ठीक है ना। अब रोज इस बात को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, सवेरे बाबा से बात करते हुए। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है योग के साथ, कि ऐसा अनुभव करना कि मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर लेकर बाबा के पास पहुंची सूक्ष्म वतन में, और बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा मुझे संपूर्ण पवित्रता का तिलक देते हैं और याद दिलाते हैं कि तुमने मुझे वचन दिया हुआ है, उस वचन से पीछे नहीं हटना है। संसार की कोई बात तुम्हें पीछे नहीं हटा पाएगी। तो रोज आत्मा में एक बल आएगा बाबा से बात करने का, उसकी प्रेरणाएं पकड़ने का अनुभव प्राप्त होगा। दूसरी बात, जैसे हम सब जानते हैं कि हमने पवित्रता को जीवन में सहज क्यों अनुभव किया, वही इसको संपूर्ण बनाने का एक बहुत अच्छा सरल अभ्यास भी है। क्यों पवित्रता सहज आई जीवन में? क्या हुआ, जो चीज कठिन लग रही थी वो सरल क्यों हो गई? बोलो, आप जानते हैं उसको, सहज बात है, बिल्कुल सहज हैं? आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया। दूसरी चीज, दूसरा किसका ज्ञान हुआ जो अब तक नहीं था? दूसरा भी एक चीज का ज्ञान हुआ, और बिल्कुल सरल बात है, लेकिन इतनी नहीं है कि संसार में उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, और वो ये है कि तुम देवता थे। कितनी सरल बात, बाबा ने हंसते बहलते कह दी, कभी सोचा ही नहीं था। सत्यनारायण की कथा कराते रहे कोई कोई तो हर मास, लेकिन पता नहीं चला तुम कौन थे। तुम कौन थे इसके उत्तर में शास्त्रों में एक ही बात आके समाप्त हो गई कि तुम आत्मा हो। इसके अलावा शास्त्रों में और कुछ नहीं कहा गया, और लोग सोचते रहे सेल्फ रियलाइजेशन हो, और उसका केवल आत्मा जानने से ही पूरा अभ्यास करते रहे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। अब दो बातें उसमें बाबा ने हमें कह दी, एक तुम देवी देवता थे, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तुमने देवी देवता रूप में इस संसार में जीवन बिताए हैं। दूसरी बात बता दी कि और भी जो मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है शक्तियों की, जिससे लोग वरदान मांग रहे हैं, जिनके दर्शन करते ही लोगों के चित्त निर्मल हो जाते हैं, भक्तों की आशाएं पूरी हो जाती हैं, वो भी तुम ही हो। तो एक आदि की याद दिलाई और एक संगम युग की हमारी महानताओं की याद दिलाई। दोनों सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं, इन दोनों के याद आते, और तीसरा आत्मा का असली स्वधर्म स्वरूप, इन तीनों बातों के याद आते ही पवित्रता हमारे लिए सहज हो गई, या कहें हमने स्वीकार कर ली। और यही बात पवित्रता को संपूर्ण बनाने के लिए है। अब आप इसी बात को आगे बढ़ाएं कि हम वही देवी देवता हैं जिनके द्वारा भक्तों को अनेक अनुभव हो रहे हैं, वो हम हैं। स्वीकार करता चले हमारा विवेक, इसका नशा चढ़ता चले, दिनों दिन इसकी गहराई में हम चलते जाएं और अनुभव देखो, और इसको कुछ बार रोज स्मृति में लाना पड़ेगा। ये तपस्या है, इसमें योग भी आ जाएगा, स्मृति स्वरूप भी आ गया और पवित्रता भी आ गई। रोज 10-15 बार कम से कम इस बात को अपने सामने लाओ कि जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही वो मैं हूं, एक कर दो दोनों को, ये स्वरूप मेरा नहीं है, वो स्वरूप मेरा है। और ऐसे ही जो आदि स्वरूप है, देवी देवता स्वरूप, जो संपूर्ण पवित्र स्वरूप है, जिसमें अपवित्रता की अविद्या है, वो मेरा असली स्वरूप है। और ये शरीर छूटने के बाद मैं उसी शरीर में चली जाऊंगी आत्मा। इस फीलिंग को, इस स्मृति को बढ़ाते चलें। बस जितनी ये स्मृति बढ़ेगी उतनी पवित्रता बढ़ेगी। अब देखो मंदिरों में एक बात बाबा और कहा करते हैं, दो बातें बाबा ने इस बारे में बहुत अच्छी कही कि भक्ति में तुम खुद ही देवी देवताओं की महिमा करते आते थे, खूब महिमा करते थे खुलेआम। अब जब तुम देवी देवता यहां इकट्ठे हुए हो, वही इकट्ठे हुए ना, तो अब एक दूसरे की ग्लानी क्यों करते हो? जड़ चित्रों की महिमा करते आए, और जब चेतन इकट्ठे हुए तो ग्लानी करते हो। पूछो अपने से ऐसा क्यों गड़बड़ हुई? करनी चाहिए महिमा और ग्लानी जड़ की, उल्टा हो जाए तो ठीक भी है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा हो गया तो अब हम एक दूसरे को भी पहचाने कि जिनसे हम भक्ति में वरदान ले रहे थे, जिनसे हम अपनी कामनाएं पूर्ण करा रहे थे, जब वो अब हमारे साथ आ गए तो अब हम उनके अवगुणों को देखकर ग्लानी क्यों कर रहे हैं, निंदा क्यों कर रहे हैं। मैं अगर किसी देवी को देखकर किसी व्यक्ति को बुरे ख्याल आ जाएं तो कैसा लगेगा उसे खुद को भी, वो भी अपने को बहुत बड़ा पापी अनुभव करेगा, और दूसरे को पता लग जाए तो उसे मार मार के मंदिर से बाहर निकाल देंगे कि बड़ा भारी पापी है ये, क्यों घुसाया यहाँ पर। तो अब जब तुम वही इकट्ठे हुए हो, तुम्हारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, तुम वही हो। ये बात बाबा रोज रोज याद दिलाते हैं, पक्का कराते हैं कि केवल अपने वर्तमान स्वरूप को न देखते रह जाओ, केवल अपनी वर्तमान समस्याओं का गायन न करो, वर्तमान कलयुग के वातावरण का गायन न करो कि बहुत गंदा वातावरण है, क्या करें, हम अकेले एक ऑफिस में और हमारे चारों ओर 100-1000 लोग, सभी अपवित्र, सभी बुरा बोलने वाले, हमें क्या करेंगे। ये बात ठीक है, एक घर में माता, चारों ओर हजारों अपवित्र लोग, बच्चे भी तंग करते हैं और लोग भी बुरा बोलते हैं, तो कौन शक्तिशाली है, एक या हजार, जरा विचार करो, कहने तक नहीं, ले आओ इसको फीलिंग में, कौन शक्तिशाली है। चारों ओर हजार लोग गंदा वातावरण बना रहे हो और आप एक हो वहां पर, लेकिन शक्तिशाली केवल तब रहेंगे जब अपनी ऊंची स्मृति में होंगे। बाबा ने इस बार तपस्या शुरू होते ही एक काम दिया है हम सबको, जिस पर अभी तक कम ध्यान है पुरुषार्थियों का, उस पर ध्यान होना चाहिए। वे इस चिटकी को पूरा कर लें जरा, भोजन खिलाने के लिए गुजरात के युवा भाई जरा कृपा करें जाने की। गुजरात के युवा भाई, ये नहीं लिखा कितने जाएं, 40 मांगे जाते हैं, जाओ वे गुजरात के युवा भाई, बुजुर्गों को छुट्टी है सबको, केवल युवा जाएंगे, युवकों का अलग क्लास होगा। फिर तो वो प्रयोग दिया बाबा ने एक बहुत अच्छा, और ये कहा कि इस तपस्या वर्ष में प्रयोग करो, योग तो करते रहते हो और अभी भी करना है, लेकिन प्रयोग करने हैं। तो वो प्रयोग क्या है, प्योरिटी के बारे में एक प्रयोग है कि आप जब भी ऐसा देखो कि आपके ऑफिस में, आपकी दुकान के आसपास, आपके घर के आसपास दूषित वायुमंडल है, आप अपनी इस स्मृति में स्थित हो जाओ कि मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, एक पवित्र आत्मा हूं, इस संसार का आधार हूं। अपनी पवित्रता की शक्ति के नशे में हो जाओ और देखो कुछ ही क्षणों में उसका क्या प्रभाव होता है। और ये प्रयोग पवित्रता के बल को बढ़ाएगा और आपको एक नया काम दे जाएगा। जब भी कहीं ऐसा देखें, अपनी ऊंची स्मृति में स्थित होकर वातावरण को ठीक करें। जब भी कभी आपके पास विघ्न आते हैं, वो हरेक के जीवन में रोज कोई ना कोई विघ्न लगा रहता है, उसको समाप्त करने के लिए केवल बाबा को याद न करते रहें। जब विघ्न आता है तो बाबा से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बाबा ये करो वो करो, और बुद्धि स्थिर भी नहीं होती, न बाबा से शक्तियां मिलती, और भिखारी की तरह भीख मांगते हैं कि बाबा बस इस बार मदद कर दो, फिर हम ठीक कर लेंगे। अनेक बातें भक्तों की तरह कहते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए सवेरे सवेरे ही इस स्थिति में स्थित करो, ऐसे संकल्प रचो कि मैं मास्टर विघ्न विनाशक आत्मा हूं, विघ्न विनाशक। बाबा अगर विघ्न नष्ट कर सकता है तो वही शक्तियां, वही वरदान बाबा ने मुझे भी दिए हैं, मैं भी विघ्न विनाशक हूं। स्वीकार कर लो इस चीज को, ये नहीं कि मेरे ऊपर तो बहुत विघ्न है, अब बाबा इन विघ्नों को नष्ट करे, ऐसे नहीं, मैं भी विघ्न विनाशक हूं, मंदिरों में मेरी मूर्तियों से ही वरदान लेकर भगत अपने विघ्नों को नष्ट करते हैं। इस नशे में रहो और देखो विघ्नों का क्या होता है। तो प्रैक्टिकल प्रयोग करें, इन प्रयोगों से वायुमंडल के प्रभाव, दुनिया के दूषित वाइब्रेशंस के प्रभाव आप पर नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल बात है, सबके अनुभव भी होंगे, कितना भी गंदा वातावरण हो, अगर हम नशे में हैं तो हमारे ऊपर गंदा वातावरण कोई असर नहीं डाल सकता। हम ही नीचे हैं, हम ही अपने कमजोर वातावरण में हैं, हमने ही अपने मन को दूषित किया हुआ है, तो दूषित वायुमंडल की खिंचावट होती है। तो अपनी ऊंची स्मृतियों के द्वारा, अपने आदि स्वरूप की स्मृति के द्वारा, अपने शक्ति स्वरूप की स्मृति के द्वारा पवित्रता के बल को दिनों दिन बढ़ाते चलें। ये तो कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो तपस्या के रूप में हम सबको करने हैं। इसमें आप जानते ही हैं आत्मिक दृष्टि का बहुत महत्व है। हमने आत्मिक दृष्टि के साथ वो बात जोड़ दी, आप याद रखें उसको, कि जिस पर भी हमारी नजर पड़े उसे हमें पवित्रता का बल देना है, वो कुछ लेकर जाए हमसे। हम जानते हैं दुनिया की आत्माएं तो गंदी हैं ही, कलयुग के अंत में अच्छी आत्माएं कहां से आएंगी, सभी पतित हैं, पतित आत्माएं ही हमारे सामने आएंगी, हमें उनकी ओर आकर्षित नहीं होना है, हमें पवित्रता के आकर्षक वाइब्रेशंस उनको देने हैं, ताकि उनका आकर्षण पवित्रता की ओर हो। चारों ओर संसार में बाबा कहते हैं पवित्रता की तो जैसे आग लगी हुई है, लेकिन हमें इस आग से अपने को स्वयं सेफ रखना है, और कोई भी आए तो आई है आत्मा हमसे पवित्रता का वरदान लेने, ये कॉन्शियस, ये स्मृति दिनों दिन बढ़ाते चलना है। इसी संबंध में कुछ और छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है जो बहुत आवश्यक है जाननी। एक, भोजन का पवित्रता से संबंध। पवित्र भोजन तो सभी को बताया ही है, पवित्र भोजन के पवित्र वाइब्रेशन समय प्राप्त होंगे, और बाबा ने अनेक बार ये बात कही है कि अगर भोजन याद में बनाया जाए और याद में खाया जाए तो आत्मा को पावन बनाने का सबसे बड़ा टॉनिक है ये। हमारा सारा पुरुषार्थ एक और पवित्र भोजन दूसरी ओर, दोनों बराबर बराबर हैं। तो ये भी किसी किसी का प्रश्न आया है कि उन्हें भोजन की तकलीफ है, घर में खाना पड़ता है या बाहर ड्यूटीज पर रहते हैं, उन सब के बारे में तो सबको अलग अलग श्रीमत दी जाती है, बाबा भी देते हैं किस तरह उन सब चीजों के साथ एडजस्ट होकर चलो। परंतु मुख्य बात यह है कि जब भोजन बनाया जाए तो उस भोजन को तपस्या का काल समझो, तपस्या का समय है वो। अगर आपका सारे दिन में 2 घंटे 3 घंटे भोजन बनाने में जाते हैं तो आप ये न समझो कि ये काम है हमारे पास, इस काम को समाप्त करके हम योग तपस्या करेंगे, लेकिन ये 3 घंटे तपस्या का समय है, इसमें हम गहरी तपस्या कर लें। और ऐसे ही भोजन खाते हुए 3 बार भोजन खाएंगे उसको भी तपस्या का समय निश्चित कर लो। 15-15 मिनट भोजन में लगे तो 45 मिनट या इसको बढ़ाकर 1 घंटा आप ऐसी अच्छी तपस्या करें तो इसका पवित्रता पर बहुत भारी बल मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ हैवी भोजन न हो, हमारा भोजन भारी न हो। अगर हम भारी भोजन लेते हैं तो वो हमारी पवित्रता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सात्विक भोजन में ये भी जरूरी है कि उत्प्रेरक चीजों का प्रयोग न किया जाए। उत्प्रेरक चीजें किसे कहते हैं? जैसे बाबा ने हम सभी को लहसुन प्याज बंद कराया है, बहुत लोग पूछते हैं ये प्रश्न, ये लहसुन प्याज तो बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेद में, इसको बंद क्यों करा दिया? दवाई को बंद करा दिया और उसका कारण यही है कि ये उत्तेजक पदार्थ हैं, उत्तेजक तत्व, काम उत्तेजक, इनसे शरीर में एक उत्तेजना पैदा होती है। ऐसे ही लाल मिर्च बहुत खाते हैं गुजरात में, जरा ध्यान दें, उसको बंद कर दें अभी। बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत चाय पीते हैं, बहुत तेज तेज चाय, ये सब उत्प्रेरक चीजें हैं। और भी अपने अनुसार देख लेना चाहिए कौन सा भोजन हमारे शरीर को भारी करता है। वो हरेक की अपने अपने शरीर के ऊपर भी है। भोजन को हल्का करना ये पवित्रता के लिए बहुत आवश्यक चीज है। ये है तो मेडिकल का पॉइंट, लेकिन जैसे आप जानते हैं प्राचीन काल में ऋषि लोग पवित्रता को मजबूत रखने के लिए भोजन पर बहुत ध्यान देते थे। ये सत्य बात है कि भोजन की अधिकता न हो, ये नहीं कि खाते ही रहें, पाचन शक्ति को टाइम भी न दिया जाए आराम करने का। हम तो आराम करना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक जो हमारा तंत्र है उसको इतना बिजी कर दें कि उसको फुर्सत ही न मिले आराम की, तो उससे नुकसान होगा हमें। और नुकसान ये होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो निरंतर शक्तियां बन रही हैं उसको हमारे ग्लैंड्स हजम नहीं कर पाएंगे और वो नष्ट हो जाएगी, हमारी ग्रंथियां उसको बाहर फेंक देंगी। ऐसे ही ये भी बहुत मुख्य बात है कि हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति जो निरंतर बनती है अन्न के द्वारा, उसको हम तीन तरह से प्रयोग करते हैं, और अगर हम उसको प्रयोग नहीं करते तो वो हमें डिस्टर्ब करेगी। पहला उसका प्रयोग योग अभ्यास में होता है। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है जो बहुत पहले से भारतवर्ष में, यहाँ के दर्शन में, यहाँ के मेडिकल साइंस में ऋषियों ने खोज ली थी, और अब ये बात हम अपने अनुभवों से भी जानते हैं कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की बहुत शक्तियां प्रयोग होती हैं। अगर आपने कभी एकाग्रता का अभ्यास किया हो योग में, तो जितना एकाग्रता का अभ्यास होगा उतना ब्रेन की शक्तियां, मस्तिष्क की शक्तियां बहुत चाहिए। जैसे जो व्यक्ति काम करता है उसको शरीर में कई शक्तियां चाहिए, भोजन ज्यादा चाहिए। जो योग करते हैं उनको ब्रेन की शक्तियां बहुत चाहिए। जो मनन चिंतन करते हैं, जिनको बुद्धि का काम है, उनको भी ब्रेन की शक्तियां, मगज की शक्तियां बहुत चाहिए। और वो शक्तियां ब्रह्मचर्य की शक्ति से प्राप्त होती हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति हमारी भिन्न भिन्न ग्रंथियों से गुजरकर अंत में हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है और मस्तिष्क को शक्तिशाली बना देती है। इसलिए ये प्रसिद्ध है कि पवित्र आत्माओं के मस्तक पर तेज आ जाता है, उनका मस्तिष्क और मस्तक दोनों तेजस्वी हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी इन शक्तियों को योग अभ्यास में और मनन चिंतन में प्रयोग करते रहें। इससे हमारे स्वप्न सात्विक होते जाएंगे, जो कि हमारी पवित्रता का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिससे बहुत आत्माएं डिस्टर्ब होती हैं कि पवित्र तो बन गए, स्वप्न अभी तक तंग करते हैं, स्वच्छ नहीं हुए हैं। तो अपनी शक्तियों को प्रयोग करते चलें। एक तीसरा भी प्रयोग होता है हमारी शक्तियों का, वो होता है वर्क में, मेहनत में। हम जो कार्य करते हैं शरीर के द्वारा, उसमें भी हमारी ब्रह्मचर्य की शक्तियां प्रयोग हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी हार्ड वर्क से, मेहनत के काम से डरना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम ये काम क्यों करें, हमारा तो ये काम है नहीं। जितना हम कार्य करेंगे हमारी शक्तियां बैलेंस में रहेंगी। इन तीनों चीजों की भी आवश्यकता है, इसलिए योग हमें संपूर्ण पावन बनाता है और पवित्रता की शक्ति हमें निरंतर योग युक्त रहने में मदद करती है। दोनों एक दो से जुड़े हुए हैं। जितनी पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली होगा और उसको एकाग्रता में सहज अनुभव होगा, मनन चिंतन हमारा श्रेष्ठ होता रहेगा। आप देखते हैं बहुत लोगों को ये अनुभव होता है कि जब वो योग करते हैं थोड़े ही समय के बाद उनका सिर भारी होने लगता है, बहुतों से मनन चिंतन होता ही नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं चलती। वो कहते हैं क्या सोचें, सारा तो बाबा ने बता दिया, नया तो कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद सोचे क्या हम? सब तो सोचने वालों ने सोच लिया, बहुत लोग सोच सोच के लिखते रहते हैं, नहीं बात कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ बचता है, केवल बुद्धि की स्वच्छता पर आधार है। तो पवित्रता की शक्ति हमारी बुद्धि को शक्तिशाली बनाती है और स्वच्छ भी बनाती है। इन तीनों साधनों के द्वारा हमें अपनी शक्तियों को कन्वर्ट करते चलना है। अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो तीन रूप हमें उसके दिखाई देंगे, एक देह का आकर्षण, दूसरा व्यर्थ संकल्प और तीसरा व्यर्थ स्वप्न। इनका कारण हमारी शक्तियों की अधिकता भी है, शारीरिक शक्तियों की, ब्रह्मचर्य की शक्ति की। इनको प्रयोग कर देना उतना ही आवश्यक है जितना जो भोजन हम खाते हैं उसको हजम करना आवश्यक है। अगर भोजन हजम ना हो तो हम जानते हैं अनेक बीमारियां उससे उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ये ब्रह्मचर्य की शक्ति अगर हम हजम नहीं कर रहे, इनको कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो हमारे पर भी मानसिक रूप से कई दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अपने स्वप्नों को स्वच्छ करने के लिए, अब स्वप्न क्या है? स्वप्नों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं संसार में होती रही हैं। किसी को रात को सांप दिखते रहते हैं, बिना मतलब, सांप उसने जिंदगी में देखे नहीं होंगे, सांप ही सांप दिखते हैं। किसी को कुत्ते भौंकते काटते दिखते हैं, किसी के घर में चोर आ जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के स्वप्न आत्माओं को दिखाई देते हैं। किसी ने कभी हाथ में तलवार नहीं ली होगी लेकिन वो युद्ध के मैदान में अपने को देखते हैं। तो ये सब क्या है? भिन्न भिन्न तरह के स्वप्न मनुष्य को आते रहते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि सबको ही स्वप्न आते हैं, चाहे बहुत गहरी नींद भी हो स्वप्न तो आते हैं, किसी को भूल जाते हैं, किसी को याद रहते हैं, कोई जरा धीमी गति के होते हैं, कोई इतने तेज होते हैं कि तेज प्रभाव डालते हैं मन पर। तो स्वप्नों की व्याख्या लोगों ने भिन्न भिन्न तरह से की है, परंतु हम जानते हैं कि द्वापर युग के बाद जो कुछ हम करते आए, जो संस्कार हमारे अंदर भरते आए, वो स्वप्न के रूप में प्रकट होते रहते हैं। एक इसका कारण ये है। दूसरा कारण, जो कुछ हम सारा दिन देखते हैं, बहुत कुछ दिखता है सारा दिन। हमारी बुद्धि सबसे तेज कैमरा है, सबसे सेंसिटिव कैमरा, जो फटाफट फोटो खींचती है। आप देखें बुद्धि सारा दिन में कितने फोटो खींचती रहती है, कितनी बड़ी ये मशीनरी है हमारे पास कि हजारों फोटो, लाखों फोटो सारा दिन हमारी बुद्धि खींचती है। कुछ फोटो हम साथ साथ मिटो देते हैं या दूसरे फोटो उससे पावरफुल होते हैं, पहले मिट जाते हैं, कुछ अमिट होते हैं, वो स्वप्न के रूप में उभरते हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम सब देखते हैं कि स्वप्न अपूर्ण इच्छाओं के प्रतीक हैं। जो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं हुई इस जीवन में, हमने दबा दी। किसी को था कि मैं एक ऐसा स्पीकर बनूं, भाषण करने वाला, जो लाखों के बीच भाषण करूं, लेकिन बेचारे को चांस मिला नहीं, तो स्वप्नों में भाषण जरूर करता होगा। आप देखेंगे है, आपने देखा होगा। तो अपूर्ण इच्छाएं मनुष्य स्वप्नों में पूर्ण करता है। हाँ, बहुत ऑडियंस उसके सामने बैठे होंगे। तो इस तरह जो भी इच्छाएं हमने अपूर्ण रख दी हैं, जिन इच्छाओं को हमने दबा दिया है, सप्रेस किया है, वो स्वप्न के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो अब हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वप्नों को स्वच्छ करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो सारा दिन इस संसार को देखते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी दृश्य का गहरा प्रभाव हमारी बुद्धि में न जा रहा हो। दिखाई तो संसार सारा देता ही है, परंतु कोई बात हमारी बुद्धि पर हावी न हो रही हो, कोई बात हमारे इंटरेस्ट का विषय न बन गई हो, रुचि न हो गई हो हमें किसी बात में। जैसे उदाहरण के रूप में आपके शहरों में जहां तहां पिक्चर्स के बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, पिक्चर कोई नहीं देखता लेकिन रुचि रहती है पोस्टर देख लें बस। तो क्या है ये रुचि? वो सब दृश्य हमारे मानस पटल पर अंकित करती रहती है। वो कैमरा इनके फोटो खींचता रहता और वो रात को स्वप्न के रूप में उभरेंगे। तो देखते हुए इस संसार में हमारी कहां रुचि है, जरा हम देखें, अपनी खोज कर लें, क्या देखना चाहता है हमारा मन, किधर झुकाव है इसका। बहुत कुछ संसार में हरेक के साथ पीछे गुजर चुका है, उसी में अगर रुचि बनी होगी तो स्वप्न उसी तरह के आते होंगे। ये है पहला समाधान जो हमें करना है कि संसार को देखते हुए बाबा के शब्दों में न देखने का अभ्यास। ये नष्ट होने वाली दुनिया है, अब इसमें हमारा शौक नहीं रहना चाहिए। एक व्रता का बाबा ने पीछे अर्थ बताया, एक व्रता अर्थात एक के सिवाय और कहीं शौक न हो, इंटरेस्ट रुचि और किसी चीज में न हो। जहां रुचि हुई वहां बुद्धि जाएगी। किसी की रुचि है और सब तो पढ़ना छोड़ दिया, बाबा ने कहा शास्त्र तो नहीं पढ़ने हैं, परंतु मैगजीनों में बड़ी अच्छी कहानियां आती हैं, नॉवेल्स जिन्हें कहें, या और भी जो अच्छी पत्रिकाएं आती हैं, धर्म योग और ये हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, इनमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, वो पढ़ने का शौक। अब अच्छी कहानी कलयुग में कितनी होती है वो तो आप जानते हैं, ये अच्छे कलयुग में अच्छी कहानी है या ये कलयुग अच्छा रहा नहीं, इसमें सब कुछ बुरा है। तो कहानियां पढ़ने का वो सब दूषित होती हैं, दूषित कहानियों का प्रभाव मन को दूषित करता है। और ये एक सूक्ष्म साइकोलॉजी है, सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि मनुष्य बुरी चीजें पढ़कर अपनी बुरी भावनाओं को सेटिस्फाई करना चाहता है। काम की इच्छाओं को दबा दिया तो उन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वो ऐसी कहानी पढ़ता है, ऐसे चित्र देखता है। इस बात से जरा सावधान होना है कि जब हम छोड़ आए एक बार एक मार्ग, हमने छोड़ दिया, अब हमारा मार्ग पवित्रता का मार्ग है, अब अपवित्रता का हमारा मार्ग है ही नहीं, तो जिस रास्ते को छोड़ दिया अब उसकी ओर हम क्यों देखें। एक बार निर्णय कर लिया हमने, बस वो फाइनल निर्णय हमारे जीवन का, हम उस निर्णय को बार बार नहीं बदलते, ऐसी अपने में दृढ़ता हो तो जो चीज उसके विरुद्ध है हम उसे क्यों पढ़ें, हम उसे क्यों देखें। जैसे हम एक उदाहरण दिया करते हैं कि मान लो एक स्टूडेंट मेडिकल साइंस में पढ़ता है, वह डॉक्टरी कर रहा है, अब वो अपनी किताबें छोड़कर और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता रहे तो क्या कहेंगे लोग उसे, मूर्ख कहेंगे ना कि ये क्या पास होगा, क्या डॉक्टर बनेगा, एडमिशन लिया है मेडिकल कॉलेज में और किताबें रखी हैं सारी इंजीनियरिंग की। तो ऐसे ही जब हमारा मार्ग ही पवित्रता का है, जब हमने स्वीकार किया, जबरदस्ती तो नहीं किया ना किसी ने, सच्चे दिल से स्वीकार किया है, तो फिर हम उसके विरुद्ध चीजों को क्यों देखें, क्यों पढ़ें। ये तरीके होंगे अपने स्वप्नों को स्वच्छ करने के। अब जो प्रैक्टिकल अभ्यास की बात है वो ये कि सोने से पहले एक तो भोजन हल्का हो, सोने से पहले हो बहुत समय, 2-3 घंटे पहले, लेट खाने की आदत गलत है। जो लोग बिजनेस में रहते हैं या कई कारणों से लेट भोजन खाते हैं, अगर लेट भोजन करना कभी पड़ता है तो आधा ही भोजन खाना चाहिए। उसमें आप ये ना सोचे कि आधा खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब आप पूरा खाएंगे उसमें से भी हजम आधा ही होगा, आधा बेकार जाएगा, तो क्यों अपना नुकसान भी करें, खर्च भी बढ़ाएं और नुकसान भी, इससे आधा ही खाया जाए ताकि वो ठीक से हजम हो जाए और नींद पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े, दूसरे दिन काम आ जाएगा, उसको रख सकते हैं आप। और अगर आपको बहुत देर हो गई है, किसी को ऐसे धंधे हो 11 बजे 12 बजे भोजन करने को मिलता हो, तो वो तो भोजन छोड़ के फ्रूट आदि ही खाएं, तो उससे योग, प्योरिटी और हेल्थ तीनों में मदद मिलेगी। और हैं क्या, नहीं यही कहा ना हल्का खा लें। तो इसके साथ तो सोने से पहले अगर अपने मन पर हम कुछ अच्छी छाप डालकर सोएं तो हमारी स्वप्नों की पवित्रता तेजी से आगे बढ़ेगी। और वो छाप दो तरह की है, ये एक बहुत अच्छा नियम आप बनाएं, बहुतों ने बनाया हुआ है कि सोने से पहले मुरली पढ़कर सोएंगे। अगर कोई मन पर बोझ है, परेशानी है, बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छा तरीका बताया है کہ بابا کو اپنے سامنے لا کر رات کو وہ بوجھ بابا کو سمرپت کرو. بابا ہرے گا, اس بوجھ کو انوبھو ہوگا کہ سویرے اٹھتے ہی اس کی سمرتی نہیں رہے گی. اور تیسری چیز, یوگ کا اچھا ابھیاس کر کے اپنے کو اچھے نشے میں استھت کر کے پھر سوئیں. کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ سارے دن کا کوئی بھی پربھاؤ من پر نہ ہو, ایسا اپنے کو فریش کر کے سوئیں گے تو سوپن بالکل ٹھیک ہوتے جائیں گے, پویترتا بڑھے گی اور سویرے یوگ ابھیاس بھی اچھا ہوگا. اب سبھی ماتاؤں کی ودائی ہے. اس بات کا بھی بہت دھیان دینا ہے کہ ایسا نہیں ہو بابا کے پاس آئے تو بابا کے, اور دنیا والوں کے سنگ چلے گئے تو ان کی اور جھکاؤ کھنچاؤ, یہ بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا پربھاؤ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا کریں ایسا ہو گیا. تو یہ بھی ایک پرشن آیا ہے کسی کا کہ سنگ کے رنگ سے کیسے بچیں. سنگ کے رنگ سے بچنے کا آدھار ہے نشے میں رہنا. جتنے اچھے نشے میں رہیں گے اتنا ہی دوسروں کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا, اپنا رنگ دوسروں پر چڑھے گا, ان کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھے گا. انوبھو بھی آپ کا ہوگا, لوگ آپ کو پسند کریں گے, آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پر ان کا کوئی بھی ان کی چھایا پڑ جائے. تو اس طرح دھیان رکھنا ہے. بابا کہا کرتے ہیں کہ پرکرتی تمہارا آہوان کر رہی ہے. اب تو آہوان کن کا کر رہی ہے, جن کے پاس سمپورن پویترتا ہے, جو اس کے مالک بنے. تو ذرا اپنی پویترتا کے مہتو کو سمجھتے ہوئے اب اس کو تیزی سے آگے بڑھانے کا لکش رکھنا ہے. کوئی بھی سنسار کا آکرشن ہمیں تبھی ہے جب اس کا انٹرسٹ ہے. آکرشن کو ختم کرنا ہے تو اس کے انٹرسٹ کو ختم کیا جائے.
بم شانتی.